अरमान को आज पहली बार अपने घर के छोटे और सामान्य से होने का एहसास हुआ। लीला तक उसके घर में नहीं रुकना चाहती थी, जबकि नव्यांशी, जो इतनी सुख सुविधाओं के साथ चौहान पैलेस में रहती थी, वो उसके घर में आराम से रह रही थी। अरमान को नव्यांशी के लिए बुरा लगा और वो उससे बात करने के लिए उसे अकेले में लेकर आया था। बातों ही बातों में नव्यांशी ने अपने इरादों को बता दिया था कि वो अरमान के साथ इस घर में पूरी उम्र तक रहने के लिए तैयार है। अरमान उसे रोकना चाहता था, लेकिन नव्यांशी मुस्कुराते हुए चली गई थी। एक पल के लिए अरमान के होठों पर भी मुस्कुराहट उभर आई थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपना सिर झटका और उसके चेहरे के भाव फिर से सख्त हो गए थे। अरमान ने अपनी आंखों को कसकर बंद किया और धीरे से बड़बड़ाकर कहा, पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, ये मुझे भी डिस्ट्रैक्ट कर रही है। मैं क्यों इसकी बातों को सुनकर स्माइल कर रहा हूँ, उल्टा मुझे तो इसे डांटना चाहिए। अरमान को तुरंत ही एहसास हुआ कि उसने नव्यांशी को कुछ न कहकर उसके इरादों पर मुहर लगा दी थी। वो तुरंत बाहर आया तो नव्यांशी मनन के पास बैठी हुई थी। अरमान को देखकर नव्यांशी ने भौंएं उचकाईं। अरमान ने उसकी तरफ घूरकर देखा और कहा, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, फिर तुम बाहर कैसे आ सकती हो? क्या तुम्हारा पूरी रात बात करने का इरादा है? टाइम तो देखो, मुझे नींद आ रही है, पूरे दिन स्क्रीन के सामने काम करके मैं थक जाती हूँ, नव्यांशी ने बेचारों सा मुंह बनाकर कहा। ड्रामे मत करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ, चुपचाप अंदर चलो, मुझे बात करनी है, अरमान ने सिर हिलाकर कहा। नव्यांशी ने तुरंत मना कर दिया था। रोहन ने उन दोनों की बहस को देखा तो वो बोला, मैं भी बस सोने जा रहा था, आप लोग यहाँ बात कर सकते हैं। बोलते हुए उसने मनन की तरफ देखा और कहा, चलिए मनन भैया, कमरे में चलते हैं, आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमारे टाइम टेबल को फॉलो करेंगे और उस हिसाब से हमें अब सो जाना चाहिए, हम पहले ही लेट हो गए हैं। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो अगली बार मैं आपको कोई नई चीज़ सीखने में हेल्प नहीं करूँगा। ओके चैम्प, जैसा तुम कहो, मनन ने उसे सल्यूट करते हुए कहा और फिर रोहन के साथ अंदर जाने लगा। मनन अंदर जाते हुए अचानक रुका और फिर नव्यांशी और अरमान की तरफ देखकर बोला, अरमान, आजकल तुम नव्यांशी से बहुत बात करने लगे हो, इससे बचकर रहना, तुम इसकी एक बात मान लोगी तो फिर ये तुमसे अपनी सारी बातें मनवाएगी। और क्या प्रॉब्लम है अगर अरमान मेरी सारी बातें माने भी तो, नव्यांशी ने उसे घूरते हुए कहा। नव्यांशी काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रही थी। मनन ने मुंह बनाकर कहा, मुझे तुम्हारे साथ इस घर में हमेशा के लिए नहीं रहना, और अगर हम नया घर लें तब तुम मेरे और अरमान के साथ रहने नहीं आओगे, नव्यांशी ने पलके झपकाकर कहा। मनन ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और कहा, नव्यांशी, मैं तुम्हारी टीम में हूँ। अरमान आंखों में अविश्वास लिए उन दोनों को देख रहा था। नव्यांशी उसकी आंखों के सामने मनन को बहका रही थी। अरमान ने चिढ़ते हुए तेज आवाज में कहा, मनन, अपने कमरे में जाकर सो जाओ, इसकी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम यहीं रहने वाले हैं, फिर चाहे किसी को ये घर पसंद हो या ना हो। अरमान के डांटने पर मनन उसकी तरफ मुंह बनाकर रोहन के साथ अंदर चला गया था। वहीं उसके जाते ही अरमान ने नव्यांशी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए उसके कमरे में ले गया था। अरमान ने कमरे का दरवाज़ा अपने पैर से बंद कर दिया ताकि उनकी आवाज़ बाहर तक ना जाए। दरवाज़ा बंद होते ही उसने नव्यांशी की तरफ देखा तो नव्यांशी सीने पर हाथ बांधकर उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। ये तू मुझे क्या सिखा रही हो, दूसरा घर, साथ रहना एंड ऑल। लिसन नव्यांशी, तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है उसे यहीं पॉज लगा दो, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है, अरमान ने गहरी सांस लेकर कहा। वो काफी गुस्से में लग रहा था। हो गया तुम्हारा, नव्यांशी भौंए चढ़ाकर बोली, मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है से क्या मतलब, तुम अच्छे से जानते हो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और तुम ये डिसाइड करने वाले कौन हो कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता है, मतलब तुम्हें थोड़ा तो अंदाज़ा है कि मेरे दिल में तुम्हें लेकर क्या फीलिंग्स हैं। बात करते हुए नव्यांशी अरमान के करीब आ गई थी और उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे अपने नज़दीक खींच लिया था। नव्यांशी अरमान की आंखों में आंखें डालकर पूरी बेबाकी से देख रही थी। पागल मत बनो नव्यांशी, अरमान ने शांत लहजे में कहा। अच्छा मुझे बताओ कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, नव्यांशी ने बातचीत का रुख ही बदल दिया था। मैं पसंद करता भी हूँ तब भी हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है, पता है ना, मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली के बीच में पहले से ही रिलेशंस अच्छे नहीं थे, ऊपर से शिवांशा और मिस्टर चौहान की शादी के बाद तो ये दुश्मनी और भी बढ़ गई है, ऐसे में कभी हमारा रिश्ता सर्वाइव नहीं कर पाएगा और मुझे इस बारे में सोचना भी नहीं है, अरमान ने सिर झटक कर कहा और नव्यांशी से दूर हो गया था। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो आगे बोला, तुम्हें तो राजावत फैमिली से नफरत है ना, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। ऐसा नहीं था कि अरमान को नव्यांशी पसंद नहीं थी, लेकिन उसका कहना भी गलत नहीं था। अगर नव्यांशी और अरमान साथ में आते तो कहीं ना कहीं राजावत फैमिली को चौहान पैलेस में घुसने का मौका मिल जाता। ऐसे में वेद और शिवांशा के रिश्ते में मुश्किलें खड़ी हो सकती थीं, शिवांशा का सच सामने आ सकता था। बहुत मुश्किल से शिवांशा को उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ मिली थीं और वेद भी उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार था। ऐसे में शिवांशा की खुशी के लिए अरमान अपने इमोशंस को दबाने के लिए तैयार था। वैसे भी अब तक नव्यांशी और उसका रिश्ता शुरू तक नहीं हुआ था। कुछ पल के लिए उनके बीच बिल्कुल खामोशी छाई रही। नव्यांशी अरमान के पास आई और उसके हाथ को थामते हुए बोली, हाँ राजावत फैमिली बहुत बुरी है और मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन हम दोनों की थिंकिंग काफी मिलती है। कौन सा तुम उनसे प्यार करते हो? और आई प्रॉमिस हम दोनों मिलकर इक्वली उनसे एक जितनी हेट करेंगे और उन्हें अपने घर में घुसने तक नहीं देंगे। अरमान ने नव्यांशी की तरफ देखा और थके हुए स्वर में कहा, तुमसे बहस करना बेकार है और मुझे पता है कि तुम इतनी जिद्दी हो कि मेरी बात सुनने वाली भी नहीं हो। अब मैं सीधा मिस्टर चौहान से बात करूंगा और अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा यहाँ। वेद का नाम आते ही नव्यांशी ने तुरंत अरमान का हाथ छोड़ दिया था। वो उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है और मुझे ये करना ही होगा, अरमान ने अपनी सफाई देते हुए कहा। डरपोक कहीं के, अभी से डरते हो? कुछ सीखो मेरे भाई से। उन्हें फैमिली की दुश्मनी और बाकी चीजों की कभी परवाह नहीं थी और उन्हें शिवांशा भाभी से प्यार था, तो वो उनके लिए उनकी शादी से तुम्हारे घर से उन्हें लेकर आए थे। छोड़ो, मुझे ऐसे आदमी से प्यार करना ही नहीं है, नव्यांशी ने चिढ़कर जवाब दिया और अरमान को पकड़कर अपने कमरे से बाहर धकेल दिया था। नव्यांशी की इस हरकत पर अरमान को बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो चुप था। नव्यांशी ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था, जबकि अरमान कमरे के आगे सिर झुकाकर खड़ा हुआ था। मैं डरपोक नहीं हूँ और अगर मुझे तुम्हारे और अपने रिश्ते के बजाय मिस्टर चौहान और शिवांशा का रिश्ता चुनना पड़े तो मैं फैसला लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, अरमान ने धीमी आवाज में कहा और फिर वहां से अपने कमरे में चला गया था। नव्यांशी ने अरमान को डांट जरूर दिया था, लेकिन अब अंदर कमरे में बेड पर तकिया गोद में लिए बैठी हुई थी। उसका मुंह बना हुआ था। क्या लगता है अरमान राजावत, इतनी आसानी से हार मान लूंगी? पहली बार मुझे कोई लड़का पसंद आया है और तुम कितना भी दूर भागो, मुझे अच्छे से पता है तुम भी मुझे लाइक करते हो। अब तुम चाहे मुझे भाई को बुलाने की धमकी दो या घर से निकलने की, मैं भी देखती हूँ कैसे मुझे खुद से दूर करते हो, नव्यांशी ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा।
रात के लगभग 12 बज रहे थे। वेद और शिवांशा में बहस होने के बाद शिवांशा अभी भी काउच पर मुंह बनाकर बैठी हुई थी। उसके इस तरह नाराज होने के बाद वेद भी नहीं सो पा रहा था। हालांकि वेद लेटा हुआ था, पर वो बीच बीच में शिवांशा को देख रहा था जो अपने घुटनों पर सिर रखकर बैठी हुई थी। क्या तुमने आज पूरी रात जागरण करने का सोच रखा है? वेद ने उठकर बैठते हुए कहा। उससे आपको क्या, आप सो जाइए, आराम से सोइए, आपको कोई तंग करने वाला भी नहीं है और जगह भी काफी सारी है, शिवांशा ने उसे ताना मारा। अभी भी उसका चेहरा अपने घुटनों पर ही रखा हुआ था और वो वेद की तरफ देख तक नहीं रही थी। वेद ने गहरी सांस ली और मन ही मन बड़बड़ाकर बोला, ये जब यहाँ आई थी तब कितनी सीधी और मासूम सी थी, पर मेरी ही गलती है जो मैंने इसे बिगाड़ दिया। अब बिगाड़ा है तो नखरे भी उठाने होंगे। वेद बिस्तर से उठा और शिवांशा के पास गया। उसने शिवांशा के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा तो शिवांशा जल्दी से हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखने लगी। अच्छा बताओ, क्या करूं जिसके बाद तुम सोने चली जाओगी? अपनी जिद में तुमने ठीक से खाना तक नहीं खाया। देखो, मुझे जिद करने वाले बच्चे पसंद नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलने वाला है, वेद ने उसे घूरते हुए कहा। आप मुझे मना रहे हो या डरा रहे हो? छोड़ो, आपसे नहीं होने वाला, जाकर सो जाइए और मैं भी सो रही हूँ, शिवांशा ने मुंह बनाकर जवाब दिया। उसे पता था कि वेद उसे मनाने के लिए आया था, लेकिन किसी भी तरीके से ये नहीं लग रहा था कि वो उसे मना रहा है। शिवांशा उठकर खड़ी हुई और लाइट्स बंद करने के लिए जाने लगी, तभी वेद ने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया था। अच्छा, तो मुझसे नहीं होने वाला, वेद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी उंगलियां शिवांशा की कमर पर थी जो धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव हो रही थी। शिवांशा का दिल मानो इस वक्त ठहर गया था। उसने जल्दी से वेद की आंखों में देखा और ना में सिर हिला दिया था। वेद के हाथ वहीं पर रुक गए थे। क्या लगता है, सिर्फ जिद करने से सब हो जाएगा? पहले खुद को तैयार तो करो, वेद ने तंज भरे लहजे में कहा, और उसे अच्छे से पता था कि उसके करीब आने पर शिवांशा का यही हाल होने वाला है। शिवांशा भले ही अपने पास्ट से अनजान हो, पर वेद को सब कुछ अच्छे से पता था। उसे इस बात का डर भी था कि अगर वो शिवांशा के पास आया और इस चक्कर में उसके दिमाग में दबी हुई यादें ताज़ा हो गईं तो शिवांशा को संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस बार शिवांशा ने वेद से कोई बहस नहीं की, बस जल्दी से लाइट बंद करके काउच पर जाकर सो गई थी। हाँ, ये बात अलग थी कि फिलहाल के लिए उसे समझ आ गया था कि अभी वो वेद के क्लोज जाने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं है। उनका रिश्ता इतना भी आगे नहीं बढ़ा था कि वो वेद के टच को कंफर्टेबल होकर फील कर सके। एक और बहाना मिल गया मुझसे दूर रहने का, मैं तब कंफर्टेबल रहूंगी ना जब आप मुझे अपने पास आने दोगे। मुझे अच्छे से पता है कि हमारे बीच की इस दूरी का कारण क्या है, और कल तो मैं इसे खत्म करके रहूंगी, शिवांशा ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा और एक नज़र वेद की तरफ देखकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। अच्छा, शिवांशा के हिसाब से उन दोनों के बीच की दूरी का कारण क्या हो सकता है? वैसे सबको इन दोनों के बीच रोमांस देखना है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप वेद के कैरेक्टर को शायद समझे नहीं, वो हर तरह से मैच्योर है, उसके लिए शिवांशा का कम्फर्ट सबसे ज़रूरी है, खुद की डिज़ायर्स से भी पहले। पढ़कर समीक्षा करके जाइएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।